May 6th, year 04. My wife in Etobicoke Jamaat Khana of Toronto. यारी मदद, बहुत बरसों के बाद आया हूँ आपके पास. हम यहाँ कल से बैतुल ख्याल का सतारा शुरू कर दिया. बैतुल ख्याल की बातें मैं समी सांझ को तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ उसके इशारे करूंगा. और मेरी इंशाल्लाह हर वाज में आपको कुछ न कुछ नई चीज मिलती रहेगी. मैं रिपीटिशन नहीं करता. अभी मैं बात शुरू करूं. ये मीठा गीना सुन के इस पर मेरा दिल आ गया. आवा सतगुरु सोहदेव कमाल किया है कि दुनिया में उसकी कोई जोड़ नहीं, कोई कॉपी नहीं. हमारी कम नसीबी एक ये है कि मेरी कौम यानी खोजा कौम, इसके अंदर मैं ईरानियों को अफगानियों को नहीं लेता, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो हम खोजे हैं ना, जिनको पीरों ने मजहब सिखाया, उनमें पढ़ने की नियत नहीं है. हम लोग घोड़े पे स्टेक लगाते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं कि एक घंटा आधा घंटा कोई अच्छी किताब पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, फरमान पढ़े, किताबें पढ़ी हुई हैं. कई लोग हैं वो किताबें खरीद लेते हैं किसी से सुन के, ओह ये किताब बहुत अच्छी है, लेके अपने शेल्फ में रख देते हैं, लेकिन कसम खाने के वक्त शायद वो किताब खोलते होंगे, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये हमारी हालत है. हमारी जमात के अंदर पढ़ने की नीयत है ही नहीं. अगर हम पढ़ें और खासतौर पे अपना मजहब पढ़ें तो हमें पता लगे कि हम कौन हैं. मुझे याद आया कि गुरप्रीत शम्स माँ बाप ने एक हमें छोटी सी कहानी दो पाठ में कही है. केसरी सी स्वरूप भुलायो अजा के संग अजा नहीं लायन, उसको केसरी सिंह कहते हैं. लायन को देखो क्या खुदा ने उसको दबदबा दिया है, मैजेस्टिक शक्ल दी है उसको, इतना बड़े उसके बाल हैं, उस دیکھو ایک دفعہ ایسا بھی وقت تھا کہ خدا کا نور شیر کے اندر اترا تھا، کروڑوں سال کی بات کرتا ہوں، لاکھوں سال کی، چوتھے اوتار میں خدا کا نور شیر میں اترا، کیسری سی میں اترا. اور کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں مگر اتنا نہیں کہتا. پھر کہتے ہیں کہ کیسری سوئی سی کا ایک چھوٹا سا بچہ، شکاری نے اس کی ماں کو مار ڈالا اور بچہ ادھر ادھر گھومتا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا، کسی شپرڈ نے، بکریاں بھیڑے چرانے والے نے اس بچے کو اٹھا لیا، بکری کا دودھ پلایا، پیار کرتا رہا، آستے آستے بکریوں کے ساتھ بڑا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بکری سمجھتا رہا. بڑا ہو گیا، اس لائق ہو گیا کہ وہ بکری کو کھا جانے، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ میں شیر ہوں. پھر شمس مبق کہتے ہیں کہ کیسری سینگھ سروپ بھلایا، وہ اپنی ذات کو بھول گیا اور اجا اجا بکرے کو کہتے ہیں، اجا کے رہے سنگ اجا ہو رہے ہوں، گھاس کھاتا رہا، بڑا ہوتا رہا، بکریوں کے ساتھ گھومتا رہا. ایک دن کوئی سچ مچ ایک شیر دور سے اس نے دیکھا کہ بکریوں کے ٹوڑے میں میری ذات والا شیر. ایک زور سے اس نے بھبک ماری، رور کیا، سب بکریاں بھاگ گئی، اس کے ساتھ یہ بھی بھاگ گئی. بڑا حیران ہوا، ادھر ادھر سے چکر کاٹ کے اس پر پہنچ گیا. اس کے پاس بکریاں تو بھاگ گئی، یہ بھی دم دبا کے نیچے بیٹھ گیا، ڈر گیا. اس کو کہتے ہیں آ میرے ساتھ. لے گیا ایک چھوٹا سا تالاب تھا پانی کا، کہتا ہے دیکھ تیری اور میری شکل ایک ہے نا. ارے ہاں، تو بکری نہیں ہے، تو میری ساتھ والا ہے نا. اب اس کو پتا لگا کہ میں تو شیر ہوں. ہمارا حال ایسا ہے، ہم شیر کے بچے ہیں لیکن بکریوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم گھاس کھاتے ہیں، گوشت کھانا بھول گئے، کھایا ہی نہیں. گوشت کیا ہے؟ صبح کی عبادت. گوشت کھانا بھول گئے، کھایا ہی نہیں. کھایا ہوئے تو سواد پتہ لگے نا. مذہب ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے خدا کے ساتھ باتیں کریں. ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کریں اور آسمانوں کی سیر کریں. ہمارا مذہب یہ ہے کہ فرشتے آ کے ہمیں سلام کریں. ہمارا مذہب یہ ہے کہ روحانیاں ہمارے ارد گرد گھومتی ہوں گے اور ہم ان کو دیکھیں. آپ کو اس جماعت خانے میں روحانیاں نظر آتی ہیں؟ خود کو نہیں دیکھتے تو روحانی کہاں سے نکلی؟ اس وقت الحمدللہ اس جماعت خانے کے اندر سینکڑوں روحانیاں موجود ہیں اور ادھر حضر امام کا نور موجود ہے. 24 گھنٹے یہ گھر کے اندر اس کا نور ظاہر ہے. 24 گھنٹے جہاں اس کا نور ہے، آسمان سے روحانیاں اور فرشتے آتے ہیں، جاتے ہیں، دیدار کرتے ہیں. ہر جماعت خانے میں، دنیا بھر کے ہر جماعت خانے کے اندر حضر امام کا نور موجود ہے اور 24 گھنٹے اس جماعت خانے کے اندر، بھلے وہ جماعت خانہ کرایہ کا بھی کیوں نہ ہو، بے حضر امام کی ملکت نہیں تو نہ صحیح، یوں تو ساری دنیا اسی کی ملکت ہے. لیکن ساری دنیا کے جماعت خانوں میں روحانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور روحانیوں کا این نہیں. 25-50 کروڑ، 2 کروڑ، بلین ٹریلین کی بات ہی نہیں ہے، بے حساب روحانیاں ہیں. اور وہ روحانیاں میں نے بہت اپنی آوازوں میں کہا ہوا ہے، مان لو کہ کوئی آدمی ہر روز اس جماعت خانے میں آتا ہے اور وہ مولا کے दरबार में पहुंच गया, गुजर गया, तो वो रूहानी बन गया। रूह मरहूम जो है, हजरत इमाम के नूर में मिल जाना बहुत मुश्किल है। भले हम लोग दुआ मांगते हैं कि या मौला मरहूम का गुनाह माफ कर, दीदार दे और असल में वापस कर, वसल कर ले, मगर हमारे कहने से वो नहीं होता। हम दुआ मांगते हैं, मंजूर करना न करना उसके अख्तियार में। तो हम लोग जो गुजर जाते हैं, रूहानिया बनते हैं, इमाम के दरबार में बैठे होते हैं, वहां भी उसके दीदार होता रहता है, और जब दीदार होता है तो रूहानियां इकट्ठी होती हैं। अभी फर्क कर रहा बताऊं आपको, फरिश्ते और हैं, रूहानियां और हैं। फरिश्ते नूर में से पैदा हुए हैं, फरिश्तों के अंदर अक्ल नहीं है, वो तो सिर्फ फरमान बरदार हैं। फरिश्तों के अंदर वो चीज नहीं कि जो इंसान को बख्शी हुई है, जैसे इंसान के ख्यालात जो हैं, इंसान जो है वो ऊंचा सोचता है, फरिश्ते हुक्म के ताबेदार हैं, मगर नूरानी हैं, नूर से पैदा हुए हैं। वो गुनाह नहीं करते, गंदे नहीं हैं, पाक हैं। मगर रूहानियों का मतलब मेरा ये है कि जो लोग दुनिया के अंदर मोमन होते हैं, गुजर जाते हैं और इस दर्जे तक नहीं पहुंचे कि वो खुदा के नूर में फना हो जाएं, वो रूहानी है। उनका दर्जा फरिश्तों से ऊंचा है, फरिश्ते उनको सलाम करते हैं, वो जहां से निकलते हैं फरिश्ते झुक जाते हैं, तेरे देवलोक प्रणाम करें। ये देवलोक फरिश्ते हमारे गिनानों में है कि ऐसे जो हमारे जो मौला के जो मोमन है उनको देवलोक प्रणाम करें, सलाम करते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं। मुझे एक शायर का शेर याद आ गया, उसने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो कुछ और है। शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था। एक किसी मौलवी ने, शेख ने उसको देख लिया, बेवकूफ क्या करते हो, शराब पीते हो, नमाज नहीं पढ़ते। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन खुदा के ऊपर जो मुझे भरोसा है, ए शेख तुझे नहीं। बिगड़ गया, क्या भरोसा है? कहता है, ए शेख तुझे मालूम नहीं कि वो कितना रहीम है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं पीता हूं कि उसकी रहमत जोश में आ जाए। ऐ शेख तर दामनी पे हमारी ना जाइयो, मेरा जो दामन है ना वो गीला है, सूखा हुआ नहीं। क्यों गीला है? कहता है, मेरा दामन नूर से गीला हुआ है। मेरा इतिकाद ये है कि वो रहीम है, और मुझे यकीन है कि वो मेरे गुनाहों को बख्श देगा। मैं गुनाह नहीं करूंगा तो रहमत किस पे करेगा? ऐ शेख तर दामनी पे हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। कहते मैं अगर अपना दामन न छोड़ू तो फरिश्ते इससे वुजू करें। यह इंसान की अजमत है। और हकीकत यह है कि जब इंसान को यकीन पैदा हो जाता ना कि ये यही है और कोई नहीं, फिर इसके बाद कोई चीज है ही नहीं। इसलिए इमाम कहते हैं, तुम्हारा मजहब जो है वो किसका है? कन्विक्शन का, कन्वीनियंस नहीं। हम खोजों ने कन्वीनियंस बना डाली। हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो सुबह और शाम नूरी हालत में रहते हैं। हमारी जमातों के अंदर ऐसे लोग हैं कि वो दुआ मांगते हैं तो कबूल होती है। हमारी जमात में ऐसे लोग हैं कि वो चलते हैं तो पीछे फरिश्ते चलते। हमारी जमात में ऐसे लोग हैं کہ جو رہتے ہیں دنیا میں, بدن ان کا دنیا میں ہے لیکن ان کے خیالات عرش پہ پھرتے ہیں. تنو پنڈ فرے مرت لوک میں, ہمارے گنانوں میں ہر چیزیں ہیں لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں. تینو پنڈ فرے مرت لوک ماں, پیر کہتے ہیں ان کا جو بدن ہے وہ دنیا میں پھرتا پھرتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے, سرتی آکاش جگہ اس کے خیالات آکاش میں گھومتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں. مشنری صاحب کتنے ہیں؟ دو پانچ نہیں, دو پانچ پرسنٹ, اور باقی جو ہے نا وہ ڈبلا بجاتے ہیں. مجھے ادھر صرف دو دن ہوئے, میں تین برس کے بعد آیا ہوں, بہت سی باتیں سنی. 70 کے لوگ ملتے ہیں, ٹورنٹو کی جماعت لگ بھگ آدھی جماعت ہے سارے کینیڈا کی, ٹورنٹو اونٹاریو میں. مجھے نہ آ کے پتہ لگا کہ ادھر یہ کیسینو ہے نا, وہ جماعت خانے سے زیادہ پیارا لگتا ہے کئی لوگوں کو. ایک پاؤں قبر میں ہے, دوسرا جنازے میں, لیکن کسینو چھوڑنا نہیں ہے. ارے یہ وہ عمر ہے کہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوو, 2 گھنٹے کھانا پینا کھاؤ, 16 گھنٹے گرپی صدر دین کی طرح بندگی کرو, تسبیح نکالو. کینی پورے صاحب لکھا لیسے, خالق گناہ بخشے. کسی دن آرام سے بیٹھ کے سوچو تو صحیح, جوان بنا 12 سال کی عمر سے لے کے اب تلک میں نے کتنے فین فطور کیے, میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی, اس کا ایک توا لگا. ہم نے اپنے مذہب کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیا ہے. پیروں کا بنایا ہوا جو ایک خاکہ تھا اس پہ نہیں چلتے, اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اور جب ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو ہماری بیعت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی. بیعت یہ ہے کہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا فرمان بردار ہوں, یہ بیعت ہے. یہ جو بیعت ہم نے امام سے کی ہوئی ہے, دینداروں ہم نے اپنا آپ بیچ دیا ہے اس کو. پیر حسن کبھی دن کہتے ہمیں صاحب نہ ہاتھے بیچانا, میں اس کے ہاتھ پہ دکان پہ بک گیا ہوں, میں اپنا نہیں رہا, میں بک گیا ہوں. اور بیعت کا مطلب بھی یہی ہے, جو وہ کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے گنانوں کے اندر, میں نے آپ کو کہا سب چیز ہمارے گنانوں میں ہے. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا, دعوے پڑنے کا مطلب اپنی مرضی سے چلنا, دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلنا. رہا چکا پاپی ساتھ اکھڑیا, اپنی مرضی سے چلے. پھر ماں باپ کہتے ہیں وہ ساتھیوں سے مومنوں کے سنگ سے اکھڑ گیا, الگ ہو گیا. آپ مراد جیو دوزخ پڑیا, بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو. مرنا شک میں مت رہو, بھرم میں مت رہو, نم کے چلو, مولا کے قدموں میں سر رکھ کے چلو, کیونکہ تمہیں مرنا ہے. ہے کوئی ایسا دنیا میں کہ جو کہے میں کبھی نہیں مروں گا؟ کوئی ہے ایسا آج تک دیکھا؟ گاندھی ایک پیپر نکالتے تھے, اس پیپر کا نام تھا ہریجن, ویکلی پیپر تھا اور گجراتی میں نکلتا تھا, پھر بعد میں ہندی میں بھی نکلتا تھا, اردو میں بھی نکلتا تھا. گاندھی نے ایک دفعہ کسی گیدرنگ کے اندر کہا تھا, کیونکہ गांधी जो थे ना, उनकी खुराक क्या थी पता है? बकरी का दूध पीते थे बस। लेकिन बकरी को 1 किलो बादाम रोज खिलाते थे, उसका दूध पीते थे। गांधी ने कहा मैं 100 बरस जीऊंगा, लेकिन 70 बरस की उम्र में गोट से ने डोली मार दी, मर गया। 100 बरस के प्लान खत्म हो गए। मरना है और कोई रहने वाला नहीं, और मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं, न मोमन को न काफिर को, क्योंकि उसी की जो जात है वो हमेशा रहेगी, बाकी और कुछ नहीं। तो फिर कहते हैं तुम्हें एक दिन मरना है, यहां क्यों याद कराया? मरना है इसलिए कि सेठ हिसाब मांगेगा, अकाउंटेबिलिटी, जो इस्लाम के प्रिंसिपल में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, अकाउंटेबिलिटी। जितने भी दुख हैं उसमें हमारा हाथ है, जितने भी सुख हैं उसकी रहमतें हैं। तो वो जो सिंह था ना, जब उसको अपने आप का पता लगा तो फिर उसने बकरी का संग छोड़ दिया। अपनो आप पिछानो रे मोमनो तामे साहेब नाम धियावो। भाई तो ख्याल हमारा बहिष्त जाने के लिए नहीं है, बहिष्त तो हमारे पांव के नीचे है। बहिष्त जो है, मौलाना सुल्तान अहमद शाह फरमाते हैं कि मोमन बहिष्त नहीं मांगता, क्योंकि बहिष्त तो घोड़े के तबेले की तरह के, जहां घोड़े आराम से बैठे हैं, खाते पीते हैं। हमको ये बहिष्त नहीं चाहिए, हम तो शहजादे हैं, इमाम के रूहानी बच्चे हैं। छोटा शहजादा है, बादशाह का लड़का है, उसको जो चीज चाहिए मिलती है, नौकर चाकर हाथ बांध के खड़े हैं। मैंने अभी आपको कहा कि मोमन वो है कि फरिश्ते उसे सलाम करते हैं, फरिश्ते उसके पीछे चलते हैं। तो ये जमात खाना जो है उसमें रूहानिया 24 घंटे आते हैं जाते हैं। कभी आप खामोश रहो और एक ध्यान हो के बैठ जाओ तो हो सकता है कोई रूहानी आपको आके कान में विस्पर करे। यहां बहुत सी रूहानी है, तो मैं ये आपको कह रहा था कि कोई आदमी इस जमात खाने में रोज आता है, लेकिन मौला के दरबार में पहुंच गया और जब वो रूहानी बन जाता है, उसको जब आजादी मिलती है, इजाजत मिलती है घूमने की, तो हर शाम को या सुबह इस जमात खाने में आता है। अगर कोई सिख मर जाता है तो वो अपने गुरुद्वारे में रूह के बाद मरने के बाद आते हैं। बाज ऐसी रूहानियां हैं कि जो आजाद हैं, बाज ऐसी रूहानियां हैं कि जो आजाद नहीं, उनके लिए एक लिमिटेड एरिया बनाया गया, उसके बाहर नहीं जा सकते। हर मजहब के अंदर क्रिश्चियन अगर रूहानी हो गया तो रूहानी हालत में, और खसूसन तौर पे मैं एक और भी बात कह दूं कि हर आदमी ऊपर नहीं जाता मरने के बाद। हमारी जमीन के ऊपर 350 से 400 फुट 400 माइल तक जमीन के इर्द गिर्द ऐसा एक कवर की तरह है कि जो इधर इक्वेटर के ऊपर बहुत बड़ा है, दूर है, और दो जो पोल्स हैं वहां कम है। ऐसा मान लो कि भाई ये इक्वेटर के इर्द गिर्द जो है तो 450 से 400 माइल दूर है, और जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है तो वहां 250 से 300 माइल होगा। इंडे की शक्ल है, एग की तरह ओवल है ये एरिया, इसको एस्ट्रल स्फीयर कहते हैं, एस्ट्रल स्फीयर। मैंने इस जमात खाने में 2-3 ऐसी वाजें की थी, बहुत बरस हो गए इस बात को कि मरने के बाद क्या होता है। तो इंसान जब गुजर जाता है, अगर वो सचमुच वीआईपी है तो उसको ठहराने वाला कोई नहीं, वो तो सीधा ऊपर जाता है। लेकिन सब वीआईपी तो नहीं है ना, तो इंसान आम तौर पे जब ये गुजर जाता है तो उसकी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है। बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, एस्ट्रल बॉडी उसके साथ इस बॉडी के अंदर होती है। जिस तरह ये बॉडी बढ़ती रहती है 20-25 बरस तक, एस्ट्रल बॉडी भी बढ़ती रहती है। अगर आदमी पतला है तो एस्ट्रल बॉडी पतली है, अगर आदमी मोटा है तो एस्ट्रल बॉडी मोटी है। लेकिन 20-25 बरस के बाद ये बॉडी नहीं बढ़ती, और आस्ते 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 ये बॉडी कमजोर होती है, बूढ़ी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद होते हैं, कमर झुक जाती है, मगर एस्ट्रल बॉडी जवान रहती है। मैच्योरिटी के टाइम पे जो हालत होती है उस हालत में एस्ट्रल बॉडी जवान होती है। तो जब इंसान मरता है ना तो ये जवान एस्ट्रल बॉडी जमीन से निकलती है। अगर कोई चाहे तो एस्ट्रली ट्रेवल कर सकता है, इसकी प्रैक्टिस होती है, ये रूहानी चीज नहीं है। बहुत से ऐसे लोग क्रिश्चियंस हैं कि जो एस्ट्रली ट्रेवल करते हैं, इसके आसन हैं, लेकिन मौत के वक्त ये बाहर आती है। मुझे वो सीन याद आता है, डायमंड जुबली का टाइम था बॉम्बे के अंदर, 1 लाख आदमी तो बाहर से आया था, 50,000 आदमी बम्बई में रहते थे, 1.5 लाख इस्माइली बॉम्बे में इकट्ठे हुए। बाड़ी जमात खाने के सामने चौगान में तंबू बना था। रात को मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार 9:30 बजे आए, बेगम उम्मे हबूबा साथ थी, इधर आके मौला बैठे, खुश थे, बहुत खुश थे, अभी लावण जुबली हुई नहीं थी। हसन अली नांदी वाला बॉम्बे में बड़ा मशहूर आदमी था, 36 बरस 36 ईयर्स उसने नादी की, हर रोज और एक दिन मिस नहीं हुआ। उसका बाप गुजर गया तो जनाजे में साथ गया, लेकिन जल्दी से भाग आया, बाप को लोग दफन कर रहे हैं, ये इधर नादी कर रहा है, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। और ये हमको कौन बोला? धनी पोते खुद बोला, असल नादी वाले ने मेहमानी रखी। मौला फरमाया, आसम तुम 36 ईयर्स से हमारी खिदमत करता है, हमारा एक दिन भी तुमने मिस नहीं किया, तो तुमको मैं पहली दुआ मुआफ करता हूं, न पढ़ो तो गुनाह नहीं। हसन अली नांदी वाला हुजूर में खड़ा था, दुआ शीश दो। हजरत मौलाना धनी सलामत दाता फरमाइंदा खाने वाला, मौला भी सर हिलावे, 3 दफा दुआ शीश दिलाई, झुका। मौला फरमाया, जमात को बोलो, रसूलुल्लाह फरमाया है जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाइंदा के जन्नत में कोई बूढ़ो मारू नहीं मिले, और बूढ़े बूढ़े ढीले होंगे, और माँ बाप फ्रेंच में बेगम साहबा को कुछ बोले, दोनों जने हंसे। रिपीट करो, हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाइंदा के जन्नत में कोई बूढ़ो नहीं मिले, कच्ची में बोलता था, बोलो, रसूलुल्लाह फरमाया जन्नत में सब जवान जाएगा। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाइंदा के जन्नत में मरे जवान हुंदा। अब खुलासा करता, बाबा फरमाया देखो, जब आदमी बूढ़ा मर जाएगा तो वो जवान बदन से जन्नत में जाएगा। ये वो जवान बदन है जिसको मैंने आपको अर्ज किया, हमारे इस बदन के अंदर एक दूसरा जो बदन है वो एस्ट्रल बॉडी है, गैशियस मैटर है। तो आमतौर पे लोग इस एटमॉस्फेयर में जाके ठहरते हैं, यहाँ अकाउंट होता है, तुमने क्या किया है, फलाने टाइम पे तुमने दुआ नहीं पढ़ी, सारी उसकी फिल्म ली जाती है, कैमरा उसके पास तो बहुत पहले से है, उसके पहले कैमरा बनाए, इंसान को बाद में बनाया। हमारी बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से जो कुछ भी हमारी सारी जिंदगी में नेकियां बदियां हुई हैं सबकी वीडियो ले गई है और वो वीडियो हमको दिखाई जाएगी। तुमने कितनी दफा झूठ बोला, नहीं खुदा मैंने कभी देख लिया, ये तुम है ना, फिर क्या करेगा, शर्मिंदा हो जाएगा आदमी को, शर्म आएगी। और फिर जब उसका ये सारा अकाउंट हो जाएगा तो फिर उसको हाथ पके घाले बेड़ियों उभा रखे चोर, हाथ पाँव में बेड़ियां डाल के उसको रखा जाएगा जिस तरह चोर खड़े होते के नहीं पहले साहिब लेखन से या होला मेरा क्या हाल होगा। कभी बैठ के सोचा कितनी बदियां की हैं, कितनी चालाकियां की हैं, कितने फरेब किए हैं, कितना दगा किया है, कितने गुनाह किए हैं, कभी याद तो करो अपने गुनाहों को, शर्म आ जाएगी। अपने गुनाहों को याद करना बमन की निशानी है और उसके दिल के अंदर जब हम अपने गुनाह को याद करते हैं ना तो मोमन अपने दिल में शर्मिंदा होता है, अंदर से पछतावा निकलता है, पशमानी निकलती है और ये जो पशमानी बहुत अच्छी चीज है। पशमानी आने से, पशमान होने से, पछताने से, रिपेंट होने से वो महबूब ही खुश होता है, हमारा सर नीचे हो जाता है और इंसान आस्ते आस्ते सुधर जाता है। इसीलिए मजहब के अंदर कहा गया कि हर रोज तौबा करो, काय की तौबा करनी है, अपने गुनाहों की तौबा, अरबी जबान के अंदर तौबा यानी फिर नहीं करूंगा उसका प्रॉमिस। तौबा का मतलब माफ नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी व तूबु अलैहि, मेरे को मुआफ कर दे मेरे पालने वाले, मैं प्रॉमिस करता हूं फिर रिपीट नहीं करूंगा, तौबा का मतलब यह है। तो हम लोग इस्माइली लोग मौलाना हज़रत इमाम के रूहानी बच्चे हैं, हमको उसने अपनी रूहानियत में ले लिया है। अब हमें इसका तो ख्याल होना चाहिए कि मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं, बकरी नहीं, अपनी औकात को समझना चाहिए। हमें मौलाना हज़रत इमाम के लायक बनना चाहिए कि हम उसके लायक मुरीद बन सके। हमारी बदियां, हमारी बुराइयां, हमारे ख्यालात, हमारी कमजोरियां, हमारी फरेब वगैरह जो हैं ये हमारे रूह को जमीन पे रखती हैं, उड़ने नहीं देती। बैतुल ख्याल पे वाज करो, क्या वाज करें, सुबह पलोड़िए आओ एक घंटा आराम से बैठो, ये कोई बैतुल ख्याल की वाज नहीं है। बैतुल ख्याल की वाज ये है कि अपने आमाल ठीक करो, बैतुल ख्याल की वाज ये है कि गुनाह ना करो, गुनाह से बचो, किसी का हक ना खाओ और जहां तक बन सके, चूंकि हम फरिश्तों से ऊंचे हैं इसलिए हमारे अंदर हर कदम, हर सोच, हर एक्शन जो है वो फरिश्तों की तरह पाक होना चाहिए। ये सारी खुदाई हमारी है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, इसलिए खुदा ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया, इंसान को अक्ल बख्शी। मैंने भी आपको कहा फरिश्तों के अंदर अक्ल नहीं है, इंसान को अक्ल बख्शी। एक दिन खुदा ताला ने फरिश्तों को बुलाया, देखो मेरा इरादा यह है, अल्लाह कहता है कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाऊं, खलीफा यानी वाइसरॉय, कि जिसके पास जितनी ताकत मेरे पास है इतनी ताकत मैं उसको दूं। इंडिया के अंदर वाइसरॉय होता था, वो इंपीरियल पोजीशन का मालिक होता था, गवर्नर नहीं, वाइसरॉय, सेकंड टू दी रीनर रूलर। तो फरिश्ते कहने लगे या मौला हम तेरा काम नहीं करते, हाँ करते हो लेकिन मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। आमीन। थोड़े टाइम के बाद खुदा एक पुतला ले आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शिश दी और आदम उसने किया, देखा इसको बड़ा खूबसूरत है। खुदा फरमाता है अभी मैं कुछ सवाल करता हूँ, भला मुझे बताओ कि ये क्या है क्यों है, ऐसी कोई चीज की तरफ इशारा किया। कुरान ने हमको नहीं बताया कि सवाल किया था, लेकिन कुछ सवालात किए खुदा ताला ने, फरिश्ते जवाब न दे सके क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, अक्ल नहीं है। आदम को पूछा ये सवाल का तेरा क्या जवाब है, फर उसने जवाब दे दिए सब के सब। खुदा फरिश्ते को कहते देखा तुम नहीं जानते और ये जानता है ना, अभी सजदा करो। यहां सजदे से मतलब सर नीचे डाल देने की बात नहीं, सबमिट करो अपने आप को, जो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा उस्ताद है, ये तुम्हारा मास्टर है, ये तुम्हारा आका है, ये तुम्हारा सेठ है। फरिश्तों ने सजदे किए, यानी अपने आप को सुपुर्द कर दिया कि हम तेरे गुलाम हैं। और सचमुच फरिश्ते इंसान के गुलाम है। एक खबर आ खुदा फरमाए क्या है तेरे को, मैं सजदा नहीं करूंगा। क्या बात हुई, ये मिट्टी से बना हुआ, मैं आग से बना हुआ, तो क्या हुआ, मेरा हुक्म है। नहीं तूने ही कहा कि मेरे सिवा किसी को सबमिट नहीं होना, हाँ लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि तुम सबमिट हो, नहीं होऊंगा मैं, जल लानत तेरे ऊपर, निकल दिया उसका। अजाजील फरिश्ता बुजुर्ग कही है, जिनका बेटा था, बुद्धिवंत कही है तैसा, 36 करोड़ किताबें पढ़िया, यानी उस जमाने के अंदर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी कि 36 करोड़ किताबें बन गई, 36 करोड़ किताबों में जो इल्म आवे इतना इल्म उसके पास था, इक्वल टू 360 मिलियन बुक्स। लेकिन लानत पड़ गई, क्यों लानत पड़ी, नाफरमानी की। नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। मौलाना हाजिर इमाम कहे बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ। मौलाना हाजिर इमाम कहे खड़े हो जाओ, उसी वक्त खड़े हो जाओ। जरा भी ढील करोगे तो गुनाह में आ जाएंगे, वो रिवोल्ट होती है। इमाम का हुक्म न माना जाए ये रिवोल्ट है, रिबेलियन है, थ्रो है, गद्दारी है, नाफरमानी है, और उसको कत्ल कर देना चाहिए। नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। मगर एक आदमी का बच्चा पागल हो गए तो पागल अगर गलती भी करता है तो मां बाप उसको दरगुजर करते हैं, इसलिए कि पागल है। हमारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो मौला इतना रहीम है कि हमारे कई गुनाह होते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, अजाने भी होते हैं, हमको माफ करता है। ये दरबार है उसका, हिज मैजेस्टी दरबार में बैठा है, अमीर वजीर इधर बैठे हैं, दबदबा है, लॉर्ड ऑफ मैजेस्टी उसके दरबार में, उसके दरबार में नवाजिशें, रहमतें, बरकतें, बख्शिशें मिलती हैं। इस दरबार में जमात खाने में हर रोज आओ, और उधर वो दरवाजा जो मोटर से उतर के अंदर आते हो ना, उस दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही कमर थोड़ी झुका दो, अपने आप को नम्र बनाओ, हम्बल बनाओ, और खास तौर पे इस अंदर आके अपने आप को उसके कदमों की खाक में रख दो, रहम कर, वो करता है। अल्लाह कहता है कोई दुख ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं, लेकिन तुम्हारी भूलों की जितनी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, अल्लाह कहता है कुरान में, मैं नहीं देता, रहमत शामिल कर देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक गुनाह की सजा $100 हैं, तो मौला कहता है मैं तुमको $100 की सजा नहीं दूंगा, $99 मैं छोड़ दूंगा, बोलूंगा $1 दे दो, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। मकलाई मेजर अली मोहम्मद रहमतुल्ला मकलाई हमारी रिक्रिएशन क्लब के प्रेसिडेंट थे, मिशनरियों के क्लब के प्रेसिडेंट थे। उसके घर एक दिन मौला खाने के लिए गए, इमाम बहुत अच्छी मूड में थे, सामने आके घुटने पे बैठ के हाथ जोड़े, क्या है मकलाई? खुदाबंद मैंने बहुत टाइम से दुश्मन में बहुत भूल चुकी है, अब मेरे को बख्श दो। मकलाई तो मिशन डिपार्टमेंट का हमारा प्रेसिडेंट है और तुम ऐसा काम करते हो, खुदा क्या किया? ये काम मेरा नहीं है, ये जमात का काम है, जमात में जाओ। अभी उसको जमात में शर्म आती थी, जमात में मुखी के पास जाके कहे कि मैंने इतने टाइम से रसूल नहीं दी, उसको शर्म आती थी, इतना बड़ा आदमी है। खुदा तू मालिक तो तू ही है ना, उधर भी इधर भी, हाँ लेकिन हमारा कानून ऐसा है, ये जमात का काम है। मकलाई ने तीसरी दफा रस किया, साफ रस जोर से कहते हैं, देखो मकलाई तुम्हारे ख्याल में कितना पैसा होना चाहिए? खुदावन मालूम नहीं। अच्छा 125,000 रुपया अभी अभी रखो, मैं 70 बरस पहले की बात करता हूं, 125,000 रुपया चुप हो गया। शाबाश के कहते हैं खेत में जाओ, मुखी 2 पैसे लेगा, 2 पैसे वल्ला तुम कब हुआ है, क्योंकि ये गलत का काम है गुनाह माफ करना। आया फिर जमात में आया, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो दरबार है ना ये उसका बख्शिशों से भरा हुआ है, बख्शिशों से भरा हुआ है। कौन सी चीज चाहिए आपको बोलो? दौलत चाहिए इधर मिलेगी, इज्जत चाहिए इधर मिलेगी, औलाद चाहिए इधर मिलेगी, कौन सी चीज चाहिए? दुनिया की दीन की नूर चाहिए यहां मिलेगा, आसमान पे पहुंचने की चाबी टिकट चाहिए यहां मिलेगी, कौन सी चीज चाहिए? इधर मिलेगी, सब कुछ इस जमात खाने में मिलेगी, कोई भी जमात खाना, लेकिन गत में मिलेगी। और खास तौर पे मुखी कमरिया बैठे हैं, गत जमात मुखी कमरिया के साथ है, अगर मुखी कमरिया नहीं तो गत जमात नहीं, और मुखी कमरिया जमात में सुप्रीम है। काउंसिल होवे के तरीका होवे के वारस होवे के राई होवे के प्रेसिडेंट होवे के काउंट होवे, अगर वो किसी मुल्क का राजा बादशाह भी होवे तो जमात खाने के अंदर मुखी के नीचे है, मुखी कमरिया सबसे ऊंचे। मुखी कमरिया हजर इमाम की गादी पे बैठे हैं, मुखी कमरिया के पास शाबीर की ताकत है। हजर इमाम कहता है मुखी अगर 2 पैसे लेके तुमको छोड़ देवे तो यहां 125,000 रुपया एक तरफ, दो पैसे ये गत की ताकत है। आपको बहुत दफा मेरी वाजों में पता भी होगा कि इमाम की घरवाली को बच्चा नहीं होता था तो जमात खाने के अंदर आके झाड़ू की तरह पछाड़ी से साफ करती थी और उसके घर की औलाद हुई। इमाम के घर में, इमाम की घरवाली को बच्चा चाहिए तो जमात खाने के अंदर सफाई करती थी। मौलाना इमाम सुल्तान महमूद शाह दत्ता की जो माँ थी ना, बहुत टाइम से बच्चा नहीं होता था। मैं ये स्टोरी नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मैं सुना चुका, इधर मिलेगा सब कुछ, इधर मिलेगा, इधर आके अपने दिल को पाक करो। अगर किसी को नफरत करते हो, हेट करते हो और वो बाई चांस बाजू में बैठा है और अगर आपने उससे नफरत की तो मारे गए, तुम्हारी सब इबादत बर्बाद हो जाएगी। उससे भी मोहब्बत करो शाह जो दीदार, यहां कोई दुश्मन नहीं है, हम सब इमाम के बच्चे। ये घर नूर का घर है, इस घर के अंदर नूरानी रहते हैं, इधर से अपनी बरकतें लेके दिल को पाक करके नूर अपने अंदर लेके अपने घर जाओ। اور اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھو، صاف رکھو۔ میں نے مومن کو بہشت دیدار، بہشت وہ نہیں کہ جو آسمانوں کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں، ارے اس دنیا کے اندر بہشت ہے، اس دل کے اندر، سینے کے اندر بہشت ہے۔ بہشت میں کیا ہے؟ غم نہیں، مومن غم نہیں کرتا، چنتا نہیں، فکر نہیں، سب کچھ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ دل کے اندر نور ہے، دل میں کوئی نفرت نہیں، ہیت نہیں، مغروری نہیں، کوئی بدی برائی دل میں نہیں، وہ دل بہشت ہے، اس دل کے اندر سکون ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی جماعتوں میں گئے 70-72 سال سے گھوم رہا ہوں، 85 برس کا ہوا، لیکن دینداروں میں بہت گھوما ہوں، اپنی جماعتوں کو جتنا میرے مولا نے میرے پہ کرم کیا بتایا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جماعت بڑی طاقتور ہے، جماعت بڑی طاقتور ہے، اس کے ساتھ مل جاؤ، طاقت حاصل کرو، روحانیت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ میں نے ابھی نہیں آپ کو کہا کیا چاہیے آپ کو، بال چاہیے ادھر ملے گا، اولاد چاہیے یہاں ملے گی، عزت چاہیے، تندرستی چاہیے، ارے دنیا کی چاہیے وہ بھی ملے گی، نور بھی ملے گا یہاں۔ دل میں راحت ہے، مومن کے اندر بہشت ہے۔ لوگ تو مرنے کے بعد بہشت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں مومن کے جیتے جیتے بہشت اس کے اندر ہے، اس کے پیچھے فرشتے چلتے ہیں۔ مذہب نہیں تھا دل میں، سپر فلوس حالت تھی ہماری، دینے والا ہے، اگر دینداروں کو چاہے تو ایک منٹ میں آدمی کو بادشاہ بنا دے۔ اس کے دربار میں میں نے آپ کو بھی کہا کوئی کمی نہیں، لیکن جب ہماری حالت بے ادبی کی ہو جاتی ہے نا، ہم جب بے ادبی کرتے ہیں، بے ادبی، نافرمانی بہت بری چیزیں ہیں، اس گھر کی عزت کرو، بے ادبی نہ کرو۔ میں بہت برسوں سے لوگوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، کئی لوگ مجھے ہیٹ بھی کرتے ہیں، جماعت خانے میں پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے ہیں، اس نے ساری برباد کر دی اپنی کمائی۔ حضر امام کی عزت کرو، ادھر حضر امام بیٹھا ہے، ابھی بھی ادھر بیٹھا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، ادھر اس طرح بیہیو کرو کہ جسے حضر امام ظاہر بانی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، بہت عزت اور رسپیکٹ سے چلو۔ مکھی کمریا کے پاس بھی جاؤ تو رسپیکٹ سے لائن میں کھڑے ہو نا، باتیں مت کرو، سلوات پڑھو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، نیاز میں پیتے وقت، دعا کراتے وقت، اور مکھی کے پاس پہنچنے سے، کمریا کے پاس پہنچنے سے، جب بھی مانو کہ ابھی ایک آدمی باقی ہے تو ہاتھ باندھ لو، کیونکہ یہ نکل جائے گا تو بندھے ہوئے ہاتھ سے ہم جا کے ہاتھ میں جو کچھ بھی دینا ہے دے کے سر جھکاؤ۔ اس جماعت خانے کی بہت عزت، یہ روحانیت ہے، اور یہ چیز ہمیں صبح عبادت میں کام آتی ہے۔ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اب جو ہم عبادت میں بیٹھے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ کئی برس ہو گئے عبادت کرتے کرتے، ملا کچھ؟ کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مذہب کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بکریوں کے ٹولے میں ہم گھس کے اپنے آپ کو بکری سمجھ رہے ہیں، ہم عام آدمی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم روحانی بچے ہیں اپنے مولا کے۔ اس طرح ہمیں بیہیو کرنا چاہیے، اور ہم کو ہمارے اندر وہ ایک قسم کی خوشی ہونی چاہیے کہ میں مولا کا روحانی بچہ ہوں، اور اس نے کتنے فرمان کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور سیدہ امام بیگم نے بھی کتنی یہی وینتی کی ہے، تو میرے ساتھ رہنا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں، وہ ساتھ ہے، ہم جدھر جاتے ہیں وہ ساتھ ہے، ہم اس کے پروٹیکشن میں ہیں، ہم اس کے چھتر کے نیچے ہیں، ہم اس کی میٹھی نظر کے اندر ہیں۔ اے مومنو، اپنے آپ کو سچا مومن بنا کے، مولانا حضر امام کا عاشق بنا کے، مولانا حضر امام کا روحانی بچہ بنا کے رکھو اپنے آپ کو۔ اپنے حالات کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو، پاک بنو، پاکیزہ بنو، اچھے بنو، نیک بنو، انشاءاللہ دین و دنیا میں سکھی اور آباد بنو گے اور صبح کی عبادت کے اندر بخشش ملے گی. کل سے ستاڑا شروع ہوتا ہے، آؤ صبح 7 دن ستاڑا پورا کرو. میں نے گئی کا جماعت میں کہا ہے، فرمان برداری کی بات کہی گئی کل بھی، یہ منہ کا سواد چھوڑ دو، صبح چائے مت پیو، فرمان منع ہے. امام کہتا ہے کہ چائے مت پیو، ستارے بیت الخیال کے ستارے میں گوشت مچھی نہ کھاؤ. ہم کیا حضر امام کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ پاکستانی چلے گئے ادھر، خداوند ہم مسلمان ہیں ادھر ہم کو، اچھا تم گوشت کھا لو، چلو بھی کھا لو. کیا ہے امام کے فرمان سے ہم 7-8 دن مچھی کے گوشت نہیں چھوڑ سکتے، مر تو نہیں جائیں گے. فرمان چھوٹے سے چھوٹا فرمان بھی مانو تو بڑا فرمان ماننے کی طاقت پیدا ہوگی. آباد رہو، سکھی رہو، تندرست رہو، گناہوں سے مولا بچا دے، نیک امیدیں پوری کرے، بخشیشیں دے دے، رحمتیں اتارے، نعمتیں دے دے، امیدیں پوری کرے، دعائیں قبول کرے، روحانی طاقت دے دے، صبح شام جماعت خانے کی آنے کی توفیق دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے.